कृष्ण हरे कृष्ण नाम गुरवे गौरचंदर राधिकाय कृष्ण कृष्ण भक्ताय मदभक्ताय भक्त्या विघ्न अपराध मैं पहले सर्वप्रथम अपने परम आराध्य नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु का श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार स्पष्ट ज्ञापन कर तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु द्वय परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद और अपने शिक्षा गुरु भक्ति सर्वस्व गिरि महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवती प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। ये लोग हमारे ऊपर में सब लोगों के ऊपर में सुप्रसन्न हो। तत्पश्चात सभापति महोदय उपस्थित मेरे परम पूज्य पाद श्री पाद में वैष्णव एवं वैष्णव जथा जो कि मेरा अभिवादन ग्रहण कर सबसे पहले हम परम पूज्य पाद कुछ गुरु महाराज जी के संबंध में दो चार बातें निवेदन करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने नित्य परिक्रमा के साथ जगत में अवतरित होकर के विशेषकर राय रामानंद स्वरूप दामोदर इत्यादि प्रसाद में आकर के अपनी मनोवैंछाओं की पूर्ति की। ये चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं अंतर कृष्ण बहिर्गौर भीतर से ये राधा भाव कांति को ग्रहण कर ये कृष्ण ही है और ऊपर से सचि नंदन गौर हरि जरूर है। तो जिस समय आए उसमें इनके हजारों परिकर इनके साथ ही आए समस्त लीलाओं के परिकर उनके उसी प्रकार से उनके अंतरंग जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जब आए उन्हीं की मनोवंशा पूर्ण करने के लिए तो उस समय भी उनके साथ में उनके सारे परिकर लोग थे। वो एक एक व्यक्ति ऐसे थे जो सारे विश्व ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते उन लोगों में से। और कितना मैं नाम गिनाऊं संक्षेप में यही कह रहा हूं कि उन परिकरों में से परम पूज्यपाद श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परम पूज्यपाद भक्ति सर्वस्व गिरि महाराज जी हम लोगों के गुरु जी। और यदि हम नाम गिनाए तो वैखानस महाराज परम पूज्यपाद पुरी महाराज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और भी हम लोगों का सौभाग्य हुआ उनके दर्शनों के प्रभुपाद से इन सब लोगों के साथ में अवतरित हुई। और इसीलिए कुछ ही दिनों में सारे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की वाणी गौर वाणी ये मठ भी है गौर वाणी का प्रचार किया। परम पूज्यपाद हमारे अशोक श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज प्रारंभ से ही बड़े निर्भीक बड़े ही निर्भीक थे, बड़े ही दयालु थे। वैष्णव का सब गुण इनमें कुट कुट करके भरा पड़ा था। विशेष करके मैं जब विचार करता हूँ तो देखता हूँ ये कतिपय लोगों में से ही थे जिनमें तिणादपि सुनी तरोरपि सहिष्णु नाम अमानी नाम मान देवी ये सब गुण बड़े थे। यहाँ तक कि आज हम अपने गुरु भाई को भी शिष्य करते हुए देखना नहीं चाहते हैं कि वो शिष्य करें, और वो अपने गुरु भाई को छोड़ दो उनका शिष्य भी प्रशिष्य भी शिष्य कर रहा हो और उद्घाटन के लिए बुलाए मठ इत्यादि के लिए मंदिर के लिए तो वो सहर्ष चले जाते हैं। उनके शिष्यों को बड़े आदर से देखते हैं। इतना धैर्य था कि क्रूर का कारण उत्पन्न होने पर भी उनको क्षोभ नहीं होता था, हमने अपनी आंखों से देखा है। क्रोध का कारण उपस्थित हो रहा है, उनका शिष्य भी उनसे लड़ झगड़ रहा है और क्षमा की मूर्ति बड़े प्रयास से उसको समझाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोग आजकल बहुत विरल विद्वान वैसे शास्त्रों के मर्मज्ञ ऐसे जब है जिन्हें ब्रह्मचारी जब उनका नाम था प्रभुपाद के समय में, उस समय में परम पूज्य पाद वन महाराज उनका नाम उस समय नंद सोनू ब्रह्मचारी के साथ में काशी में वाराणसी में गए और वहाँ विश्व संस्कृत विश्वविद्यालय के उस समय के तदानीतन जो प्रिंसिपल थे वो भारत के गणमान्य विद्वानों में से संस्कृत एक थे। उस समय में वयोवृद्ध थे, करीब 80-85 वर्ष थे। भारत वर्ष में उनका बड़ा सम्मान और उनके यहाँ घर में गए और वो स्नान इत्यादि करके जब निकले तो इनसे पूछा यह ब्रह्मचारी तुम लोग कहाँ से आया है? मायापुर से आया है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती सब लोगों को एक तरह से शुभ्र और सब लोगों को मुसलमान और सबको ये उपवीत दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग वहां से तो नहीं किंतु वही प्रभुपाद के यहाँ से हम लोग आए हैं और उन्हीं का वाणी प्रचार करने के लिए आए। उन्होंने आपने ऐसा क्यों कहा जो सबको शुक्र इत्यादि को ब्राह्मण बना रहे हैं? क्या आप श्रीमद्भागवत का श्लोक जानते हैं? जस जल लक्षणम पुलको गणाभिगंजकम जदा नक्षत्रा दृश्यते तत्ते। आप इस तार्थ बतलाइए चतुर्वर्ण मैं इसका अर्थ आप बतलाइए। थर थर कांपने लगे, उत्तर नहीं दे सके और ऐसा मालूम ये गिर जाएंगे तो उनकी पत्नी घर से निकल करके और उनको किसी प्रकार से वहां से निकल। ऐसे निर्भीक वक्ता थे, नहीं तो प्रभुपाद का प्रचार ऐसे ही सारे विश्व में जिस प्रकार से हो रहा है। इसलिए उनके एक एक ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी का नाम सुना होगा प्रभुपाद से, किस प्रकार से बंगाल में और प्रभुपाद जी का प्रचार किया जाकर के जिस भरी सभा में उन्होंने कहा राम छागल किसको कहा और कहा विवेकानंद के द्वारा ये भारत की संस्कृति नष्ट हो रही है। सारी सभा उखड़ गई और सब उनके ऊपर में बिगड़ने लगे। उस समय में हमारे परम विद्वान संस्कृत के प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य वो थे नहीं तो नहीं उनको याद नहीं है। बड़े विद्वान जहाँ पर विद्व सभा होती तो प्रभुपाद उनको भेज दे और सभाओं में भारती महाराज को भेज दे।
मुक्ति मुक्ति भारती
खूब संस्कृत है तो वो बोलते हैं ना लंबा चौड़ा देश जमान की जाए जहाँ तो नाम समय तो वो उन्होंने प्रभुपाद जी को दिया टेलीग्राम दिया हमारा सब प्रचार इन्होंने चौपट कर दिया और उन्होंने भरी सभा में इस प्रकार से उनके विरुद्ध में बोले तो मैं आज हमारा लाख कोटि रुपए का प्रचार हुआ। मैं आ रहा हूँ और सभा फिर बुलाओ और फिर जिसको हाय वो खंडन करने के लिए आए। नहीं भाई हमको याद नहीं आया
बहुत प्रसिद्ध विद्वान नेमी महाराज,
नेमी महाराज के
प्रोगति नेमी महाराज
वंदे नंद क्या वो कहते थे नंदम वंदे जस्या लिंदे परम खड़े हो करके बैठक तो अद्भुत अद्भुत एक एक की बात में ब्रह्मचार्य साधारण की बात कर रहा हूँ और ये लोग तो कैसे थे दिग्विजयी लोग थे गिरी महाराज भाषण ऐसा देते थे तम सभा गड़गड़ करने लगती उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि हुआ है परंतु जबाद प्रभुपाद जी के जाने के बाद में हमारे शिक्षा गुरु श्रीभक्ति माधव गोस्वामी महाराज ने मठ को छोड़ करके तब फिर प्रचार करना और कहा पंजाब में उधर में कहा में आसाम और उधर में दक्षिण में हैदराबाद और उत्तर में देहरादून इत्यादि सबसे उन्होंने प्रचार किया। आज देख रहे हैं अति विजय जो में भी परम पूज्य पाद भक्ति महाराज जी आज विदेशों में कैसे प्रचार कर रहे हैं। हम लोगों के लिए उन्होंने सपाट मैदान बना करके रख दिया ये हम लोग उसमें प्रचार कर सकें, नहीं तो पहले जैसा जैसी स्थिति थी उसमें प्रचार करना बड़ा भारी कठिन था। अब तो कोई प्रतिवाद करने वाला नहीं। प्रभुपाद जी के समय में जिस समय आरंभ किया प्रभुपाद को जान मारने के लिए किस प्रकार से नवद्वीप में वहां के सर्जिया लोगों ने और वहां के जाति गोस्वामी उन्हें मारने के लिए चेष्टा की थी ये सभी लोग आप लोग जानते हैं। इन्हें बड़ी कठिनाई आज विदेश में हम लोग जाते हैं कोई भी प्रचार में विरोधी कुछ करने की कोई हिम्मत नहीं रखता। बड़ी बड़ी सभाओं में विदेश में भी हम लोग जाकर के बोलते हैं कोई भी प्रतिवाद करता है ये सब इन्हीं की महिमा है। आज हम यहाँ पर गौर वाणी में विरोधी गौर मठ में उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके चरण में है। इनकी महिमा जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है। आज परम पूज्य पाद माधव गोस्वामी महाराज के एक उधर में एक इधर में दो मठ हैं और सुंदर रूप से यहाँ से अभी भी सारे विश्व में भारतवर्ष में यहाँ से प्रचार ये गौरव वाणी है क्या किसको कहते हैं गौरव है। हमारे समय से गौरव वाणी ये रूप गोस्वामी है महाप्रभु जी की महाप्रभु जी के भावों का की अभिव्यक्ति और उसकी मनोभीष्ट पूर्ति ये श्री रूप गोस्वामी। आज चार पांच दिनों से हमारे यहाँ श्री रूप गोस्वामी के संबंध में महत्व के संबंध में उनके चरणों के हम लोग पुष्पांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य पाद भाकी महाराज जी भी कल गए थे बहुत सुंदर उन्होंने भाषण दिए और भी बड़े बड़े विद्वान लोग धन्य मथुरा और वृंदावन के आए थे। हम लोगों को समझने के लिए ये गौण वाणी किसको कहते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये सब हम लोगों को समझना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता की बात है आप जैसे तैसे वृंदावन में क्यों वृंदावन में और इस समय में क्यों आए अभी वृंदावन के पंथ की अभी क्या विशेषता है किस लिए है अभी चार तरफ में झूले पड़ रहे हैं सावन में झूला पड़ रहा है रिमझिम वर्षा हो रही चारों तरफ में ऐसा कोई जगह नहीं है कोई मंदिर नहीं है जो मठ नहीं है घर नहीं है जहां पर झूले नहीं झूल रहे राधे झूला न पधारो झुक आई बदरा। इसी के लिए सारे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं कृष्ण की अद्भुत अद्भुत यहाँ लीलाएं हुई। मथुरा में उनका जन्म नहीं हुआ मथुरा में आदिभाव हुआ जन्म हुआ गोकुल ब्रज में उनका जन्म हुआ पल्ले में झूले वही गोकुल में और फिर यहाँ पर कैसी कैसी इनकी लीलाएं हुई आपके पास में ये भी लीला का स्थान है। ऐसा ब्रज में कोई भी स्थान नहीं जहाँ पर कृष्ण की लीला का स्थान नहीं है सफर होगा ये तो काली अदर है पाटी में काली के ऊपर में नृत्य किया उन्होंने किसने किया उसका भी बहुत रहस्य है, हमारे गोस्वामी में ले दिए हैं। ये गोपियों को दिखलाना था कि मैं इतना दीर हूं, इसलिए उन्होंने नृत्य किया। इसके अतिरिक्त यहाँ राष्ट्रस्थली है जहां पर राष्ट्र हुआ था, यहाँ पर सेवा कुंज है। सेवा कुंज मैंने क्या, यहाँ पर कृष्ण ने राधा जी की सेवा की, सर्वत्र कृष्ण की पूजा होती है, उन्हीं की प्रधानता। और वृंदावन के सेवा कुंज में जहाँ पर रूप गोस्वामी भजन करते थे, जीव गोस्वामी पीछे थे, दामोदर महाराज दामोदर जी को रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकट कराए। ये सेवा कुंज में कृष्ण स्वयं उनकी सेवा करते हैं। और भी कितने स्थान है झाड़ू मंडल से लेकर के राधा दामोदर, और उधर में कृषि घाट बंसी बाटी इत्यादि सब जितने भी स्थान है वृंदावन में कौन कौन सी लीलाएं थी, सिर्फ रूप गोस्वामी ने इसका भी वर्णन किया है। तो अभी हम लोग रूप गोस्वामी का मना रहे थे, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप पदाम पदांतिकम। रूप गोस्वामी अपने चरणों में हमें स्थान दे, मैं उनका आश्रय लेता हूं। इसलिए श्री चैतन्य जी के मनोभीष्ट की पूर्ण कीर्ति वही गौरवाणी। तो गौरवाणी क्या है, रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को कैसे पूर्ण किया, उनका मनोभीष्ट क्या था, यह समझने के लिए हमारे गोस्वामियों का शरणागत होगा होना होगा। उन्होंने बताया राधाया प्रणय महिमा कितनी शोवा में युवा अश्वाद जनाद्भुत मधुर ना कितनी शोवा मधि। चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्ट क्या थी, कृष्ण लीला में उनकी तीन वंशाएं पूर्ण नहीं हुई, और वो तीन वंशाएं थी राधिका जी का प्रणय भाव करता कृष्ण के प्रति। कृष्ण संसार के आराध्य हैं, कृष्ण जैसा कोई भी सुंदर नहीं है, कृष्ण के दर्शन से सभी लोग तृप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण की आंखें तृप्त होती हैं कहां, राधा जी के सौंदर्य और माधुर्य। राधा जी सभी जन बड़ी हैं, किंतु कृष्ण सोच रहे हैं मैं राधा जी के बिना में पागल नहीं हो जाता, मुझे दिल पर उन्माद इत्यादि नहीं होता, पता हमारे अंदर में कुछ ऐसा गुण है, हमारी माधुर्मा ऐसी है जो प्रेम रस के सर्वश्रेष्ठ आश्रय जो श्रीमती राधिका है, वो इस प्रकार से मेरे प्रति उनका प्रणय है। हमारे अंदर जो माधुरियां हैं उसको राधा जी सर्वोत्तम रूप में आस्वादन, और उसके कहते उनको सुख होता है। मैं राधा जी को देखता हूं तो मुझे जो सुख होता है उससे कोटि गुण सुख होता है यदि मुझे वो देखती। तो वो क्या है, इन्हें पूर्ण नहीं कर सके, इसलिए राधा जी का भाव और अंग कांति लेकर के वो जगत में सचिनंदन गौधरी के रूप में। और भी एक विशेष कारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एक जो घटुतार इच्छा और उद्गम। कृष्ण रसिक शेखर है किंतु साथ ही साथ परम करुण है, असुखी करुणा सागर है। इन दोनों वंशाओं के कारण, इन दोनों कारणों गुणों के कारण, एक तो राधा जी का भाव आस्वादन करने के लिए आया, आस्वादन क्या इसलिए सरस्वती के कारण, किंतु भविष्य में कैसे व्यक्ति कोई भी व्यक्ति इसका आस्वादन कर सकता है, इसलिए राग मार्ग का प्रवर्तन किया, ये उनकी करुणा है। सुबह प्रकाश सिद्धाम बनमंगल इत्यादि ये शखर रस के पंजर है। मैया जसोदानंद बाबा ये बात्सल्य रस के पंजर है। गोपियां उनमें भी लगता है शाखा, और उनमें भी श्रीमती राधिका जी ये मधुर रस के लिए लोग पंजर है। जिनको रागात्मिक जन भी कहता है, जिनके आत्मा में अनुराग है, स्वभावतम ममता अतिशयानंदी का भावी शांत रूप में, घन स्वरूप में, तीनों कृष्ण की सेवा कर सकते हैं और करते हैं। जब तक इनका अनुभव न हो तब तक इस भजन में करोड़ों करोड़ जन्म में भी प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण होकर के राधा जी का भाव लेकर के इन चीज को देने के लिए स्वयं आए और राग मार्ग का प्रवर्तन किया। भक्ति दो प्रकार की, अन्य अभिलाषिका संयम ज्ञान कर्मार्थ ज्ञानावृतम आनुकूल्य कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रूप समय रूप में वैष्णव के अनुगत्य में, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा तन मन वचन और सारी इंद्रियों के द्वारा, सारी शक्तियों के द्वारा अनुकूल प्रतिकूल रूप में, अनुकूल रूप में उनकी सेवा और प्रतिकूल रूप में जो नए भक्ति के लिए बाधक है उसको न करना। इस प्रकार से भाव तक जब कृष्ण की सेवा होती है तब उसको भक्ति कहते हैं, और जब वही भक्ति अन्याभिलाष कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कोई चीज की वांछा न हो, सांसारिक या लौकिक भाव हो, किसी प्रकार की इच्छा न हो, कामना न हो, और वह भक्ति कर्म और ज्ञान के द्वारा आच्छादित न हो, तब वही भक्ति उत्तम भक्ति होती है। ये कहां से आरंभ होगी? कृष्ण सेवा की लालसा से आरंभ करके, जिसको श्रद्धा कहते हैं। कृष्ण भक्ति करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, यहां से श्रद्धा आरंभ होगी। और कहां तक जाएगी साधन भक्ति, भाव भक्ति, और अंत में सिद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति, और उसमें स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव महाभाव रूर अधिरूर, और इसके बाद में मोहन मोदन, और अंत में मादन अवस्था, जैसे विरह में भी मिलन और मिलन में भी विरह, ये सारी स्थितियां होती है। ये राधिका जी के भाव है और कहीं किसी में नहीं है। कृष्ण उसी भाव को दिया। चैतन्य महाप्रभु की अभिलाषा यही थी, और इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु के पैदल श्री स्वरूप गोस्वामी ने इसकी स्थापना की। स्वरूप दामोदर आनंद थे, किंतु जहां कृष्ण नाम सुनते थे पावन हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे महाप्रभु स्वयं। किंतु गोस्वामी को प्रयाग ने ऐसी औदार्य शक्ति भर दी कि कृष्ण लीलाओं का चिंतन करते समय और उनका स्मरण और कीर्तन करते समय भी उनको मूर्छा नहीं होगी। इसलिए उन्होंने उज्जवल मणि के जितने भी उदाहरण दिए हैं और दो ग्रंथ और विदग्ध मार्गों में ऐसे चीजों को उदाहरण उन्होंने दिया है जिसमें उनको पागल हो जाना चाहिए था, मूर्छित हो जाना चाहिए थे, किंतु मूर्छित नहीं हुए। महाप्रभु की विशेष कृपा से उन्होंने कहा था, रस तो एक अपार अगाध अनंत सागर है कृष्ण भक्ति रस, मैं उसमें से एक बिंदु केवल तुम्हें चखा रहा हूं। और तब फिर उन्होंने उनको बतलाया, वर्णन किया, केवल अपने ही सुनित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य स्वरूप दामोदर राय रामानंद इत्यादि जितने भी उनके परिकर थे उन सबसे निवेदन किया कि इसके हृदय में आप लोग शक्ति का संचार कीजिए, ये हमारे भावों को ये जगत में प्रकाश। महाप्रभु नहीं कर सके, स्वरूप दामोदर इत्यादि नहीं कर सके, किंतु इनको सभी के निवेदन करके शक्ति संचय किया और अपने भी शक्ति संचरित की। इस तरह से इन्होंने महाप्रभु के जो अंतर्निहित उद्देश्य और भाव थे उनका उन्होंने उद्घाटन अपने ग्रंथों में किया, जिसको देख करके हम लोग भी धीरे धीरे इसके तट में बढ़ सके। हजारों जन्मों में भी यदि रूप गोस्वामी के चरणों की धूली की चिंकर भी हम लोग हो सके, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यही हमारे भजन का उद्देश्य है। इसलिए हम लोगों को पहले हम किस लिए भजन करने आए हैं, हमारे भजन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये पहले ठीक होना चाहिए। यदि यह ठीक नहीं हुआ तो फिर रास्ता कैसे, मार्ग कैसे ठीक होगा? ये चीजें जो बताया हमने, ये वैदिक भक्ति के द्वारा संभव कभी भी नहीं। और वैदिक भक्ति का अतिरिक्त हमें कोई दूसरा सहारा नहीं है, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां कैसी हैं? ये प्राकृतिक इंद्रियां हैं। और प्राकृतिक इंद्रियों पर अप्राकृत ये कैसे हो सकता है? ये जीवा हमारी प्राकृत, हमारा काम प्राकृत, हमारा मन प्राकृत, हमारा सब कुछ प्राकृत। और इस पर राधा कृष्ण का चिंतन, उनका नाम जो समस्त वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, और बताया ना, नारद बिना जीवन सुधोर्मी निज्ञा माधुरी पूरा संकृष्ण नाम काम पूरा रसने रसे। ये नाम को साधारण मत समझना, ये स्वयं राधा और कृष्ण है, महाप्रभु स्वयं है। ये इसमें सारी शक्ति वो नहीं है जो स्वरूप के कृष्ण में और राधा जी में भी महाप्रभु जी में भी नहीं है। सारी शक्तियां उसमें भरती है। और हम जैसे लोग जो प्राकृत जीवा और प्राकृत मन और शरीर वाले हैं, इसी का चिंतन करते करते धीरे धीरे वो शक्ति इस पर आएगी, संचरित होगी। इसका अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। अभी जो हम लोग साधन कर रहे हैं प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा, इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा कृति साध्य भवेश साध्य भाव ससाधन विराधित सिद्धस्य भावस्य प्राप्त। भाव तो नित्य है, परिक्रम में नित्य है। जबकि इन प्राकृतिक इंद्रियों से अप्राकृत प्रभु के नाम इत्यादि का हम साधन करते हैं भाव को लक्ष्य करके, तब तो साधन लाभ साधन नहीं होगा। लाभ साधन करो, भाव के लिए जब साधन करेंगे तब तो फिर इसको साधन करें। दिव्य मंगल आदि इसी साधन की श्रेणी में आते हैं, साधारण नहीं। और भाव अवस्था तो और भी, प्रेम सुज्ञान सुसाम्य भाव, ये तो बहुत चीज है। इसलिए आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अत भजन क्रिया तत्व अनर्थ निवृत्ति, सब लोग को सामने प्रारंभ करना होगा यहीं से। किंतु यदि वैष्णव का अनुगत्य नहीं रहा, गुरु वैष्णव का वो भी सदगुरु और सद वैष्णव हो और इस प्रकार के वैष्णव हो, तो पहली भक्ति के द्वारा वो उद्देश्य साधित नहीं होगा। उसके द्वारा तो सामान्य सुकृति से संतों का संग मिल जाएगा, यही होगा। किंतु वो भक्ति जिसको राजमय भक्ति कहते हैं वो संभव नहीं है। वो कैसे होगा? कृष्ण भक्ति रस भाविता मती क्रियतां सुतोपि यदि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकम्। जन्म कोटि सुकृति, कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से नहीं होगा। ये तो कृष्ण भक्ति रस में सारा बोल जिसकी ये हो गई है भावना, केवल ऐसे महान भक्तों के, रूप गोस्वामी के लाइन में आने वाले महाभक्तों के, रसिक भक्तों और तत्कर्ष भक्तों के लिए ही संभव हो सकता है। इसलिए हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का एक श्लोक उदाहरण देकर के अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत से वक्ता लोग रहे हैं। अरथो भगवान ब्रजेश तमय सब धाम वृंदावन, रम्या काशित उपासना पद पर बड़गेन जाकर पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम सत्प्रापु। कृष्ण हमारे आराध्य हैं, किंतु याद रखिए कृष्ण तो आराध्य हैं, किंतु कौन से कृष्ण आराध्य? द्वारकाधीश मथुरेश ये सब नहीं, हमारे आराध्य हैं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, जिसके हाथों में मुरली है, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, जो अपने को नंद का पुत्र कहते हैं, जो राधा कांत हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, वो हमारे आराध्य। जिस प्रकार से वो आराध्य है वृंदावन नहीं आराध्य, वृंदावन का अस्तित्व कृष्ण नहीं कहीं जाते और राधा जी भी नहीं जाते। जो कुरुक्षेत्र में जाते हैं वो कृष्ण और राधा जी कुछ दूसरे हैं, उनमें भी अंतर है, केवल मथुरेश कृष्ण और द्वारकेश में भी नहीं, इसमें भी कुछ भाव का तारतम्य है। इसलिए कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनय सब धाम वृंदावन, वृंदावन में वृंदावन को छोड़ करके न तो राधा जी जाती हैं न कृष्ण कभी जा सकते हैं। गोपियों की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर क्या और किसी की आराधना श्रेष्ठ नहीं। इसलिए राधा नाम पढ़ाती, इसलिए जो कृष्ण की आराधना करते हैं और कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो राधिका जी हैं, कृष्ण भी उनकी आराधना करते हैं। ये कृष्ण ही राधा जी हैं या राधा जी भी कृष्ण है ऐसा भी कहा गया है। इसलिए ब्रजेंद्रनंदन श्यामचंद्र ही हमारे आराध्य है और गोपियों की आराधना सर्वोत्तम, यही हमारा मूल उद्देश्य है सारे भजनों का। ये गोपियों की दासियों की दासी की दासी हम लोग, इससे बढ़कर क्या होगी, रूप गोस्वामी के चरणों की दासी हम लोग हो सके, इससे बढ़कर क्या होगी। यही चैतन्य महाप्रभु का विचार है, श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण है, समस्त प्रमाणों में श्रीमद् भागवत मूल प्रमाण है। इसे चैतन्य महाप्रभु का यही विचार है, यही मनोभव है रूप गोस्वामी ने, और उसके बाद में उनके अनुरूप हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी और जितने सब गोस्वामी हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इसके बाद में नरोत्तम ठाकुर, श्यामानंद प्रभु श्रीनिवासाचार्य, उसके बाद में श्रीलति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, उसी लाइन में बलदेव विद्याभूषण जी आए, उसी के लाइन में हमारे श्रीलभक्ति विनोद ठाकुर, ये सप्तम गोस्वामी है, इनको साधारण मत समझना। हमारे गोस्वामी के बाद में अब तक किसी को गोस्वामी नहीं कहा गया, इन्हीं को गोस्वामी माना गया। ये हमारे नौ युवक नरयुग के भक्ति युग के ये प्रवर्तक हैं और इनके बाद में श्री प्रभुपाद और उसी की धारा में कड़ी में हम लोग के गुरुपाद पद्म परम पूज्य पाद हमारे भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज, देवी महाराज जी इत्यादि के समय, तो उनके चरणों में मैं अपनी पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ कि उन्हीं की वाणी का हम लोग भी इस प्रकार निर्भीक रूप से सारे विश्व में प्रचार कर सकें, जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया है, यही कहकर के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। गौर प्रणाम। इस सम्मेलन में उपस्थित हुए और श्री रूप गोस्वामी को के चरणों में पुष्पांजलि दी, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए मेरी इच्छा ये थी कि हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सब लोग मिलकर के हम कुछ संस्कृत विद्यालय की इस प्रकार से स्थापना करें, ये भविष्य में ये विश्वविद्यालय हो सके। बैठ जाओ, बैठ जाओ। विद्यालय की इस प्रकार से रूपरेखा बनाई जाए, ये भविष्य में हम लोग यहाँ से सारे वैष्णव दर्शन को हम लोग अध्ययन अध्यापन की हम व्यवस्था करें, सारे वैष्णव समय विशेष करके हमारे गौड़ीय वैष्णवों का जो साहित्य है वो बहुत ही विस्तृत भंडार है, अगाध ब्रह्मांड है। इसलिए प्रारंभ में हम लोग हरिनामा मत व्याकरण, साथ साथ में मैं चाहता हूँ पाणिनि व्याकरण की भी जरूरत है, इसलिए वो भी एक विभाग रहेगा, न्याय का विभाग रहे, श्रीमद् भागवत के पठन पाठन का भी उसमें एक अलग से व्यवस्था रहे और इस तरह से सुंदर यह प्रेखा की जाए। जैसे उड़ीपुरी में शंकराचार्य के समस्त पीठों में इसकी सारी व्यवस्था है, कि हम लोगों के भी उसमें कुछ विद्वान निकले, रसिक लोग निकले, भजन प्रिय भी निकले और विश्व में उसका प्रचार किए, अन्यथा हम लोग उनकी सभाओं में कुछ भी बोलने योग्य नहीं। अपने अपने घरों में तो कुत्ते भी भौंकते हैं, किंतु बाहर में जाने के बाद में जब उनको पता लगता है कि कैसा उनका विराट अध्ययन, संस्कृत में धारा प्रवाह में बोलते हमारे, हम समझते गौड़ीय वैष्णव ऐसा कोई नहीं है अभी जो धारा प्रवाह रूप में हमारे जीव गोस्वामी के विचारों को, रूप गोस्वामी के विचारों को तत्व के रूप में प्रतिष्ठित कर सके। इसलिए मेरी इच्छा है कि भविष्य में इसको बढ़ाया जाए, इसलिए इसका अपना विद्यालय हो, इसलिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है और संस्कृत का भी हमारे बड़े नम्र और बड़े
और क्या कहें, सब वैष्णव गुणों से विभूषित ये पंडित जी हैं। आज बहुत जल्द शीघ्र में हमने गत वर्ष में आरंभ किया, किंतु मुझे खुशी हो रही है कि इस विद्यालय में कम से कम तो 30-32 विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं, और हरिप्रिय जी की भी ऐसी व्यवस्था है जिससे कि ये लोग शीघ्र बोलना चलना आरंभ कर रहे हैं। अभी पढ़ने पर भी लोग नहीं बोल पाते हैं, वो चार चतुर्वेदी भी हों, वैष्णव दर्शन में भी गए हों और सब भी हो, उन लोगों से बल्कि हम लोग संस्कृत में कुछ बोल लेंगे, किंतु वो लोग नहीं बोल पाते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें विद्यालय में प्रारंभ से ही कुछ बोलने चलने की परस्पर में कुछ प्रतियोगिता रखी जाए, जिससे कि ये लोग बोल सकें और बाहर में भी संस्कृत की तैयारी हो। इसलिए पंडित जी का भी, पंडित जी बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अपने मधुर व्यवहार से सब बच्चों को खूब अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। मैं और भी अधिक से अधिक योग्य विद्वानों को इसमें लाने की चेष्टा करेंगे, जो अनुभवी हो और धीरे धीरे हरिनामामृत व्याकरण को सीखें, हमारे गोसाइयों के जो ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन अध्यापन करा सकें, और उनके लिए हम यथा योग्य कुछ देने की चेष्टा हम लोग करें। तो अभी बम्बई के किसी प्रतिष्ठान से कुछ परीक्षाएं हुई हैं, और जिसमें हमारे बच्चों ने, हमारे विद्यार्थियों ने बहुत सुंदर उसमें परीक्षा दी, और उसका परीक्षा फल भी बहुत ही अनुकूल और बहुत ही अच्छा आया है। इसलिए और भी इसको आगे बढ़ाने के लिए, उत्साह देने के लिए मैंने कहा कि इनको कुछ पुरस्कार देना अत्यंत अच्छा है, जिससे कि ये लोग और भी परिश्रम करें और हमारे वैष्णव शास्त्रों में ये अधिक से अधिक प्रवीण हो सके। तो उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने कुछ उन विद्वानों को, जो बच्चों को जो कुछ विशेष रूप में कृतित्व लाभ किया है, उनको हम लोग थोड़े से कुछ पुरस्कार देंगे। भविष्य में ऐसी योजनाएँ रहेंगी और इसको बहुत ही जल्दी से हम लोग आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत लोग श्रेष्ठ राज्य व्यक्ति लोग हैं, धनी व्यक्ति हैं, विदेशों में भी हैं, यहाँ पर भी हैं, जो इसमें सहायता करना चाहते हैं, और वो लोग जब देखेंगे ये परीक्षा फल अधिक हो रहा है, यहाँ से अच्छे बच्चे कृतित्व के साथ में पास कर रहे हैं, योग्य बन रहे हैं, तो और लोग भी इसमें सहयोग करें। इसलिए शीघ्र ही हम लोग पृथक रूप में विद्यालय बनाने की चेष्टा करेंगे, एक एक बीघा का एक एक जगह में ये अध्ययन और अध्यापन। आज उसी की कड़ी में हम लोग बोलिए किसका किसका नाम है और उनके पुस्तकें कहाँ हैं। ठीक, आप
परीक्षा के लिए कुल 23 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, इसमें से एक विद्यार्थी
हमारे पंडित जी, अभी उन्होंने संन्यास लिया है, और संन्यास का नाम हुआ है किस्मत भक्ति भक्ति किंकर तुम्हारा
भक्ति किंकर सिद्धा
भक्ति किंकर ना
भक्ति किंकर सिद्धा।
तो ये बहुत ही नम्र हैं और बड़े उत्साह के साथ में, अकेले इनके उत्साह पर हमने आरंभ कराया, और आज बड़े संतोष की बात है और हर्ष की बात है। आज इनके विद्यालय में कितने 30 और मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही 50 तक ही हो जाने की संभावना है, और उन बच्चों को भी हम छात्रवृत्ति देने की सोच रहे हैं। पहले विद्यालय भवन बन जाए तो जितने इसके अनुभवी अध्यापक होंगे उनको भी, और छात्रों को भी जहाँ तक हो सकेगा उनको कुछ छात्रवृत्ति देने की हम लोग व्यवस्था है। विदेशी लड़के भी इसमें पढ़ सकेंगे, और इसमें भले ही संस्कृत में न हो तो उनको भक्ति रसामी संधो इत्यादि का और हमारे ग्रंथों का, जीव गोस्वामी के ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में भी कुछ अध्यापन करें। बहुत से लड़के हैं तो संस्कृत के बच्चों को भी, उनको भी कुछ संस्कृत का साधारण नॉलेज कराकर और उनको अंग्रेजी भाषा में भी इनका ये किया जाए, और विदेशों से चाहते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा यहीं से उनको कुछ क्लास यहाँ से भी दिए जाए, उन लोगों का ऐसा है, और वो लोग भी हमारे विद्यालय को बहुत कुछ सहायता कर सकते। हाँ, तो मैं हमारे पंडित जी से अनुरोध करता हूँ, प्रधानाध्यापक से ये दो चार शब्द इसके विषय में बोलें। अन्नदान बहुत बड़ा दान है, किंतु उस अन्नदान से भी विद्यादान है, किंतु विद्यादान में भी मैंने कहा अन्नदान साधारण लोग कहते हैं, किंतु अन्नदान से भी विद्यादान का महत्व अधिक है। किंतु रावण से कौन विद्वान होगा संस्कृत का, तो ऐसे विद्या की जरूरत है। रावण सारे वेदों का एकदम कंठस्थ स्वर दसों मुखों से वो करता था स्तुति, और उसका मर्मज्ञ विद्वान था। हमारे जिन असुरों का नाम लिया गया है, ऐसे कोई नहीं थे जो विद्या नहीं जानते, बड़े बड़े विद्वान थे। इसलिए वो विद्या तो नहीं, किंतु अंत में पंडित जी ने ये कहा मति गया जिससे भगवान ने मति, और विद्या भगवत अवधि, यदि भगवत अवधि न हो तो उस विद्या का कोई मूल्य नहीं है। बड़े बड़े नास्तिक लोग आजकल संस्कृत सीख रहे हैं और भगवत विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, भक्ति का विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। विशेष करके आर्य समाजी जितने बड़े बड़े विद्वान होते हैं, चतुर्वेदी पंचवेदी और न जाने पंच तीर्थ षट तीर्थ पुराण तीर्थ कितने बड़े बड़े होते हैं, और भगवत भक्ति का खंडन करते हैं, तो वो विद्या विद्या नहीं है, ऐसी विद्या की जरूरत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं विद्या रूप गोस्वामी के और हमारे वैष्णव ग्रंथों का कुछ अध्यापन हो, किंतु उसे भक्ति नहीं होगी ये समझ रखो, वो तो वैष्णव के चरण में ही होगी। इसको अच्छी तरह से समझो, भगवान में ममता कहाँ चलाएगी वो चीज विद्या, वैष्णव के चरण में वो नम्रता कहाँ चलाएगी, वैष्णव मेरे हैं ये कहाँ से आए। इसलिए मैं पहले से ही कहता हूँ, यदि भगवान का भजन करना चाहते हो तो सबसे पहले गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के विद्यालय में एडमिशन लो, और इसे आगे बढ़ना है तो हरिदास ठाकुर के विश्वविद्यालय में भक्ति हो, तब तो कुछ आएगी भक्ति, अन्यथा भक्ति नहीं आ सकती। कृष्ण नाम करने में यदि रोमांच हो जाए, तदस्मसारम हृदय वतीदम यद गृह्यमाण हरिनाम, यदि हरि कथा सुनने में कृष्ण नाम करने में यदि चित्त द्रवित नहीं हुआ, अंग पुलकित नहीं हुआ, तो उस भक्ति भक्ति का ही क्या मूल्य है और उस विद्या का ही मूल्य है। इसलिए हमारा लक्ष्य यह है कि विद्या हो भगवतावली, और विद्या कैसी हो, महाप्रभु जी ने पूछा कि कौन सी विद्या सार है, तो राय रामानंद जी ने क्या उत्तर दिया, कृष्ण भक्ति बिना। तो उसके लिए हम लोगों ने विद्यालय स्थापन किया है और स्थापन करेंगे, जिससे कृष्ण भक्ति इसमें प्रतिष्ठित हो, ये मूल विषय ये रहेगा। हमारे पंडित लोग भी, हमारे और लोग भी इस चीज का ख्याल रखें, ये लोगों ने भगवत भजन के लिए संसार किया। अच्छा तो ये होता कि घर से ही सारी विद्या सीख करके आते, और नहीं तो अब से जो सीखेंगे इसमें कुछ गड़बड़ी होती है, इसमें आधे फट जाएंगे छलनी में निकल जाएंगे, और आधे में रह जाएंगे, आधे में भी कुछ छलनी ऊपर चलने में और भी छट जाएंगे, बस एक दो ऐसे निकलेंगे जो परम भक्तिमान होंगे, गुरु की चरणों की सेवा कर सकेंगे। बिना गुरु के चरणाश्रय से और कोई भी सिद्धि नहीं हो सकती है। यदि गुरु के चरणों में हम लोग आत्मविक्रय करके उनकी सेवा करें तो हम भजन कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, पढ़ने के लिए गुरु के चरणों का आश्रय छोड़ करके बहुत से लोग आते हैं, उनको यह शिक्षा दी जानी चाहिए अपने गुरु के चरण में पूर्ण रूप से अनुगत्य रहे और रख करके पढ़ो लिखो भजन करो, अन्यथा तुम्हारी ये भक्ति का कुछ भी मूल्य नहीं होगा। आज समय चला गया, आज हम लोग रूप गोस्वामी के संबंध में काफी लोग थे वक्ता लोग, उनके मुख से हम सुनना चाहते थे, तो उतना तो समय नहीं मिल सका। अब तो 7 बजने जा रहा है, मैं हैं 1 घंटा तक हम लोग और तो हम नहीं बैठ सकते इतना, तुम्हारे जैसे नौजवान नहीं है। तो मैं वक्ताओं से यह अनुरोध करूंगा 10 से 15 मिनट में सारांश मिशन के सारांश
बसों ही भाग मिशन।
तो संक्षेप में 10 मिनट में 15 मिनट में अधिक से अधिक, नहीं तो 5 मिनट में अपने पुष्पांजलि को रूप गोस्वामी के चरणों में अर्पित कीजिए। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, पीछे देखेंगे, कल मतलब फिर इधर ही कर रहे हैं, इसमें सब लोग आए हैं सुनने के लिए। तो सबसे पहले तुम ही बोलो, बोले क्या? और तीर्थ महाराज जी बोले, संक्षेप में कुछ बोलिए। आप तो बोल रहे हैं किंतु फिर भी बोलिए, खड़े होकर के नहीं तो आना है तो इसको बैठ करके बोलो। सभी लोग 10-15 मिनट कर लेंगे।
वृंदावन में आकर के लोग तो देश में उद्धार से भी जो प्रकार भक्त जो